السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب. آج هم إن شاء الله تعالى سورة هود آيات نمبر 96 سے لے کر اور إن شاء الله اس سورة کو مکمل کریں گے 123 تک. دیکھتے ہیں اس کی تفسیر. اس سے پہلے آپ نبیوں کے قصے پڑھ چکے ہیں، قوموں کی داستانیں، پانچ قوموں کا ذکر آپ کے سامنے آ چکا ہے. آج موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھوڑا مختصر سا ایک ذکر ہے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں گے ایک ڈیفرنٹ بات آپ کو بتائی جا رہی ہے. یہ سورت جو ہے، یہ یعنی اللہ تعالیٰ کہ جو بھی ایام اللہ جو ہے نا، اللہ کے ایام جن میں قوموں کے اوپر تباہی آئی ہے، ان ساری باتوں کو مختصراً یہاں پہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا تو مختصراً مگر باقیوں کا ڈیٹیل میں ذکر آ گیا. اور جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں شروع میں سورہ کے، کہ یہ وہ سورہ تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا تھا، آپ کے بال سفید ہو گئے تھے اس سورت کی وجہ سے. کیا وجہ تھی؟ ایک آیت اس میں آتی ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ وجہ تھی کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید ہو گئے. اور باقی یہ قوموں کے جو ذکر ہیں وہ بھی تو بڑی شدت ہے، اس کے اندر انذار کا پہلو غالب ہے، وارننگ کا. اور اینڈ میں تو آپ دیکھیں گے کہ بالکل جس طرح ایک بالکل حتمی بات کہہ دی جاتی نا، فائنل، کہ ٹھیک ہے پھر کرنا ہے تو کرو، تم نے جو کرنا ہے کرتے رہو، ہم نے جو کرنا ہے وہ ہم کرتے ہیں. تو دیکھتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ، وسلطان مبین، اور کھلی دلیل کے ساتھ. اس کا مطلب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آیات بھی آئی ہیں اور سلطان مبین بھی. سلطان کس سے ہے؟ سین لام تو سے. تسلط بھی اسی سے ہوتا ہے. تسلط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز پہ غالب آ جانا. تو ایسی حجت جو بڑی قوی دلیل ہو، مضبوط دلیل، جو لوگوں پہ غالب آ جائیں. تو آیات آئیں یعنی تورات کی آیتیں جن میں احکامات تھے، اور سلطان مبین کیا ہے؟ کھلے کھلے معجزات، روشن معجزات، آسا، ید بیضا. اور موسیٰ علیہ السلام کی تو مشہور معجزات ہیں، آپ کو پتہ ہے، نو کھلے معجزات آئے تھے، آسا تھا، یہ ید بیضا تھا، طوفان تھا، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون، پیداوار میں کمی، جانوں میں کمی. اور بعض مفسرین نے بھی پیداوار میں کمی اور جانوں میں کمی کی جگہ پہاڑ کو سائبان بنانا اور اوپر اٹھا لینا اور سمندر کو چیر دینا، یہ معجزات انہوں نے بتائے ہیں. کہ کتنے واضح معجزات تھے ان کے. کس کی طرف بھیجا تھا؟ یہ ید بیضا اور عصا دے کر، روشن معجزات دے کر، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، اس کی قوم کی طرف، قبطی قوم جو تھی. اب اتنے واضح معجزے تھے لیکن قوم کا حال کیا تھا؟ فتبعو، تو انہوں نے پیروی کی امر فرعون، فرعون کے حکم کی. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جو کھلی نشانیاں ہمارے سامنے آئی ہیں، یہ پیغمبر جو ہے ایک سچائی کی بات لے کر آئے ہیں، اس کو چھوڑ کے وہ فرعون کے پیچھے ہی چلتے رہے. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کے پیچھے ہی چلتے ہیں؟ بعض دفعہ ان کے خوف کی وجہ سے، بعض دفعہ ان کے پاس جو مالی آسائشیں ہیں اور جو دنیا ہوتی ہے وہ لوگوں کو اتنی مرعوب کر دیتی ہے کہ وہ حق کو دیکھ کے بھی اس سے آنکھیں بند کر لیتے، نہیں مانتے. اور ان کو اچھا لگتا ہے کہ ایسے جو جن کو کہیں گے آج کے وقت میں سیلیبریٹیز کہیں گے، اس وقت تو سب سے بڑی سیلیبریٹی فرعون ہی تھا، اس سے زیادہ پاورفل اس ملک میں کوئی نہیں تھا، اس جگہ میں. تو اب آپ سوچیں کہ ایک ملک کا جو حکمران ہے उसके अकीदे पे इसलिए चलते रहना कि ये तो भाई इतना बड़ा बादशाह है। और अक्सर लोगों के अकलों पे पट्टी या अकलों पे पर्दा पड़ जाता है जब वो देखते हैं कि कोई बड़ी शख्सियत जो दुनिया में बड़ी समझी जाती हैं वो किसी गलत अकीदे पे हैं, तो वो सोचते हैं कि नहीं बस यही सही है, इनकी मुखालफत हम क्यों करें। वमा अमरु फिरौना भी रशीद, हालांकि फिरौन का जो हुक्म था वो रशीद नहीं था, यानी रास्ती पे नहीं था, उसका तो सारी जो जो सारे काम ही थे वो गलत किस्म के थे, वो गुमराही पे था। गुमराही का उलट होता है रुश्द, तो वो रुश्द पे तो था ही नहीं, स्टिल उन्होंने चूज किया कि वो इसके पीछे जाए, क्योंकि लोग ना सिर्फ जाहिर को देखते हैं, जाहिर में क्या नजर आ रहा है, जाहिर में उसकी ताकत नजर आ रही है, उसका माल नजर आ रहा है, उसकी जाह नजर आ रही है, उसकी बादशाहत, उसकी ठाठ बाट, उसका रोब, ये सब नजर आ रहे हैं, बस लोग उसके पीछे। यानी हक का फैसला करने के लिए ये नहीं देखना कि ये यानी कोई चीज राइट है या रॉन्ग है, इसका फैसला आप इस बुनियाद पे नहीं करें कि कौन है जिसके पास ताकत ज्यादा है। अच्छा ये मान रहा है तो फिर ये भी चीज ठीक ही होगी, ये तो इतना ताकतवर है। और इंसानों ने हमेशा अपनी अकलों को एक तरफ रख के इसी तरह किया, डिपेंड किया है ऐसे लोगों की अकलों पर जो दुनिया में बड़ी कामयाब समझे जाते थे। और देख लें कि आज भी बाज लोगों की अकल ऐसी मारी गई है कि वो फिरौन की और जो इस तरह की उनकी चीजें छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स बनाए होते हैं, छोटी छोटी चीजें उसकी बनाई थी, बड़े शौक से लेके रखते हैं कि ये फैरो का और ये फैरो की उसका है और ये फलां का है, जबकि कुरान कहता है कि वमा अमरु फिरौना भी रशीद, फिरौन का तो कोई काम भी सही नहीं था, उसका हुक्म, उसकी जो हालत थी और जो उसके काम थे वे बिल्कुल रास्ते पे नहीं थे, उसका बुरा अंजाम देखने के बावजूद कुछ लोग उसको बड़ा यानी बड़े बड़ी चीज समझते हैं। यकदुमु कौमहु, कयादत करेगा अपनी कौम की, दुनिया में तो की, दुनिया में तो उसने लीड किया अपनी कौम को, लेकिन कयामत के दिन भी करेगा, ये इन फिर किधर लेकर जा रहा होगा। फअउरादहुमुन्नार, फिर औरादहुम ले आएगा उनको, वारिद करते हैं ना हमने, कहता तुम किधर से वारिद हो गई, वारिदन आ जाना ना, तो औरादहुमुन्नार तो ले आएगा उनको आग पे, यानी दुनिया में तो इसने उनको गुमराही का रास्ता दिखाया ही, तो ये यहीं तक का मामला नहीं रहेगा, कयामत के दिन भी वो इनको लीड करेगा और ले जाएगा जहन्नुम तक। इसे क्या पता चला आपको, पहले तो इसकी आग की बात बता दें कि वह बिसल विरदुल मौरूद, कितना बुरा घाट है ये, जहां पे लाख खड़ा करने की जो जगह है, जहां पे उसने लोगों को लाके पहुंचा दिया, ये कितनी बुरी जगह है। तो क्या समझ आई इससे आपको कि दुनिया में जिसको जो फॉलो करता है ना, कयामत के दिन भी उसी लीडर के पीछे होगा, वही लीडर उसके आगे आगे होगा और ये इसी तरह उसको फॉलो करेंगे। हदीस में भी आता है ना कि कयामत के दिन इंसान उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता होगा। तो ये फिरौन के पीछे चलने वाले जो लोग थे वो कयामत के दिन भी उसके पीछे चलेंगे। सो इट्स नॉट समथिंग जो बहुत आप लाइट लें कि मैं किसको फॉलो करूं, जो फॉलोइंग यहाँ की है ना, वो सिर्फ यहाँ की फॉलोइंग नहीं रहती, वो कयामत के दिन तक की फॉलोइंग बन जाएगी। कभी लोग जिनको सेलिब्रिटी, अब नाम दिया इसलिए मैं कह रही हूँ कि सेलिब्रिटी जो हैं, कोई एक्टर है, कोई प्लेयर है, कोई और ऐसा बंदा है, कोई सियासतदान है, कभी कोई, उनको बड़ा आइडियलाइज करते हैं और उनके जैसे ही काम करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं की आदत, अतवार, लिबास, उनकी सूरत, उनकी शक्ल वैसे ही बनाने की कोशिश करते हैं, उनके स्टाइल्स को कॉपी करते हैं, वो कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसी अदाएं दिखाता है, इसको बड़ा यानी इससे बड़ा मेसमराइज होते हैं लोग।
लेकिन क्या कभी सोचा आपने कि जिनको आज मैं फॉलो करूंगी इन्हीं के साथ कयामत में होंगी? और सोचे कि कयामत के दिन ये लोग कहाँ होंगे फिर? अगर ये इसी रविश पे रहे जिस पे वो हैं, तो कहाँ होंगे कयामत के दिन? इनके हाल हालात क्या हैं? किसी के बारे में आप हतमी तो नहीं कह सकते, मगर इन हाल और इन आमाल वाले का क्या अंजाम आप सोचते हैं? इंसान का दिल खुद गवाही देता है, उसका दिल खुद बताता है। तो ये कोई छोटी मामूली बात नहीं है, बहुत सोच समझ के किसी को फॉलो करें, अपने लीडर या अपने गाइड या जिनके पीछे भी आप चलना चाहते हैं, चाहे वो अबाउ अजदाद हैं, चाहे वो कोई भी है, सोचें तो सही कि ये किधर को लेकर जा रहा है। और वैसे जो विरद होता है, घाट होता है पानी का, लेकिन ये देखो कैसे घाट पे ले आया, आग के घाट पे। सारी कौम को ही इसने हलाकत में डाल दिया, खुद तो डूबा, सबको लेके डूबा। तो ब्लाइंड फॉलोइंग किसी की ना करें सिवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के, उनके ब्लाइंड फॉलोइंग करें, बाकी किसी की ब्लाइंड फॉलोइंग करने की जरूरत है? कोई परफेक्ट नहीं है, कितना ही वो आपको चाहे नेक साले नजर आ रहा हो, कोई परफेक्ट नहीं। अगर हमारे लिए रोल मॉडल है ना, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, जिनको अल्लाह ताला ने फरमा दी कि वो उसवा है, उनके अलावा कोई नहीं। तो उनको हम अक्ल को एक साइड पे रख के उनको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बाकी किसी के लिए भी अक्ल तो इस्तेमाल करें। हम यहाँ पे मरवूब हो जाते हैं, बहुत इंप्रेस्ड रहते हैं ऐसे लोगों से, लेकिन ये तो सोचेंगे हमें कहाँ तक ले जाएंगे। तो कयामत के दिन ये आगे आगे होगा और इसके पीछे पीछे इसके फॉलोअर्स होंगे। उस दिन जैसे दुनिया में कोई झंडा उठा लेते हैं ना, कोई आगे आगे हज वगैरह पे आप देखें रश बहुत होता है, तो जो एक ने झंडा उठाया होता है, जो लीडर होता है, उसके पीछे पीछे सारे उसका ग्रुप चल रहा होता है झंडे को देख देख। इसी तरह कयामत के दिन ये आगे आगे होगा, इसके पीछे पीछे इसकी कौम होगी। अल्लाहू अकबर। तो लीडर्स को देखें और फिर उसके बाद देखें कि ये ऐसे के पीछे चलने पे मैं कहाँ तक जा सकती हूँ। कयामत मेराज पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था कुछ लोगों को कि फरिश्ते उनको आग की तरफ ले जा रहे हैं, आपने पूछा ये कौन है? फरमाया ये फिरौन और उसकी पैरवी करने वाले हैं। देख लिया आपने, ये अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया। हम कहते नहीं नहीं फिर क्या करें, फिर दुनिया में भी तो रहना है ना, फिर क्या करें, फिर इनको ना फॉलो करें तो क्या करें? हमने अपने आइडियल ही उनको बनाया होता है। तो फिरौन ने दुनिया में तो जो बिगाड़ किया सो किया, आखरत में भी देखें कैसे लोगों के हजूम को ले जाएगा, पूरी कौम को अपनी। यहाँ पे भी इसके पीछे वो डूब गए, समुंदर में इसके पीछे ही उतरे थे ना, सब डूब गए। और कयामत के दिन भी ये इसी तरह करेगा। वह उठ भी आऊ और पीछे लगाए गए, फी हादी लानत व यौम अल कियामा, इसमें लानत, इसमें किसमें? इस दुनिया में भी पीछे इनके लगा दी गई लानत, इस दुनिया में भी अल्लाह की रहमत से दूर, इस दुनिया में भी फिटकार है उनके ऊपर, और कयामत के दिन भी उनके ऊपर लानत होगी। यानी अल्लाह की रहमत से जब ये दूर होंगे, तो जो अल्लाह की रहमत से दूर हो गया उसको क्या मिलेगा फिर? और आप देखें पहले बादन का लफ्ज भी आया, बादन मदियन के लिए, बादन और बादन समूद के लिए, कैसे वो कौमें मिट गईं, इतनी तरक्की याफ्ता थी। फिरौन के तो जो यानी उसकी बादशाहत में जो ये अहरामे मिस्र हैं, कैसे वो बने हुए आज तक खड़े हैं, हजारों साल गुजर गए, लेकिन उनके बनाने वाले कहाँ गए? जो इस पे बादशाहत करते थे वो कहाँ गए? जो तकब्बुर से जिनकी गर्दनें अकड़ी हुई थी वो कहाँ गए? वहां कोई बसा नहीं उन जगहों पे। इतनी तरक्की की उन लोगों ने, लेकिन अल्लाह ताला ने देखो उनको कैसे खत्म कर दिया। खुद सोचें, आज की कोई बहुत ही तरक्की याफ्ता कौम एकदम मिट के रह जाए, एक सुबह हो और पता चले सभी खत्म हो गए, अल्लाह माफ करे, तो क्या हाल हो, कैसी बड़ी न्यूज़ बन जाए। तो ये इनके ऊपर लानत हुई इस दुनिया में, और जो ये लानत ज़दा होते हैं उनको कभी भी एडमायर नहीं किया जाता, उनकी कभी तारीफ नहीं की जाती। बेसर्रिफ दुल मरफूद, कितनी बुरी है बख्शिश जो दी जाने वाली है, कितनी बुरा इनको सिला मिला, कैसा इनाम मिला देखो इनको इनके करतूतों का। तो कयामत के दिन तो जो होना है वो तो होगा ही, और दुनिया में भी रुसवाई के डूब के मरे, बेबसी में मरे। वो जो इतने अपने आप को दिखाते थे, देखो कैसे डूब रहे हैं, देखो कैसे उनको कोई बचाने वाला नहीं, जिनका जाहो जलाल इतना था कि उसके एक बात कहने के ऊपर बच्चे ज़िबा कर दिए जाते थे, देखो वो कैसे बेयारों मददगार डूब रहा है। क्योंकि फिरौन जो था ना एक सिंबल था, आज तक देखें लोगों को उसका नाम पता है, जिनको कुरान का नहीं पता तो उनको भी पता है कि फिरौन बादशाह गुजरा था, जो ऐसा बड़ा बादशाह था। तो एक यानी सक्सेस का सिंबल कह लें या एक बहुत ही ताकत का सिंबल कह सकते हैं। तो चढ़ते सूरज को लोग सलाम करते हैं, तो वो चढ़ता सूरज था ना, ये नहीं अकल इस्तेमाल की कि ये कैसा है। और फिर देखा वो खुद गया और साथ उनको भी लेके गया। ذلك من أنباء القرى نقصه عليك, ये हैं बस्तियों की खबरें हम बयान करते हैं आप पर, मिनहा قائم وحصيد, इनमें कुछ तो कायम है खड़ी हुई है और कुछ हसीद है। हसीद पता है क्या होता है, जो फसल जो है अभी पकी नहीं है पहले ही कट जाए। यानी वैसे तो इनको अपनी तबे उम्र गुजार के दुनिया से जाना था, जब किसी के मरने का टाइम आता वो चला जाता, लेकिन ये तो हसीद हो गए, यानी वक्त से पहले ही काट दी गई ये फसल। वक्त से पहले जो फसल कट जाए, यानी अभी वो तो उसने बढ़ना था, फलना फूलना था, बड़ा होना था, उससे पहले ही उसको काट दिया गया। इसी तरह ये कौमें, इनकी खबरें अल्लाह ताला आपको बयान करता है, इनमें से कुछ तो कायम है खड़ी हुई है, यानी मौजूद है, इनके आसार मौजूद हैं, और कुछ तो बिल्कुल जड़ से ही कट गए, उनके तो आसार भी पता नहीं है, पता ही नहीं वो कहाँ है। आप देखें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, अब उसकी खुदाई करके उन्होंने नीचे से निकाली, वो पूरी की पूरी जमीन बोस हो चुकी, बिल्कुल खत्म हो चुकी। वो तो अब जब खुदाई की उनको पता चला सारे कदीमा को के महकमे ने, और उन्होंने फिर देखा कि क्या क्या नीचे है, कैसे घर बने हुए हैं, कैसे इनकी चीजें थी, कहाँ चली गई वो। अरे अभी जो बच्चे थे वो भी खत्म हो गए, जो जवान थे वो भी, अभी तो उन्होंने पलना बड़ा होना और पता नहीं क्या क्या काम करने थे, लेकिन ये हसीद हो गए, जड़ से ही काट दी गई। और इसी तरह और भी कई कौमें हैं दुनिया में जो तबाहशुदा हैं, मैंने आपको बताया था वजह कि क्यों सिर्फ इन्हीं कौमों का जिक्र किया गया, ना ऐसा नहीं कि दुनिया में और कोई कौमें तबाह ही नहीं हुई है। अब पोम्पे आई की बस्ती का आपने अगर कभी सुना हो इसका नाम, वो भी सल्तनत रोम का एक शहर था, रोमन एम्पायर का एक सिटी था, पोम्पे आई, PompeII, ठीक है। अब आप अभी नहीं, क्लास के बाद आप इसके ऊपर सर्च करके देखिएगा कि ये कैसी कौम थी, ये भी कौमे लूत जैसे ही काम करती थी। और इनके ऊपर जो आतिश विषा हो गया था ना, वो फट गया था, और इसने, ये 2000 साल पहले की बात है, कि इस लावे से सारा शहर तबाह हो गया, और ये तबाही इतनी अचानक थी कि ऐन दिन के वक्त जब रवा दवा जिंदगी थी, तो उस वक्त ये आतिश इतना फटा, और आज भी इसके आसार इसी तरह मौजूद हैं जैसे 2000 साल पहले थे। ऐसे लगता है अल्लाह ताला ने इन लोगों को इबरत के लिए यानी इस तरह महफूज कर दिया कि वो ना इस तरह जैसे फ्रीज हो जाता है ना कोई, इस तरह फ्रीज हो गए। उनके ढांचे भी फ्रीज हैं, आपको इनकी पिक्चर्स मिलेंगी, इनके ढांचे भी जैसे फ्रीज हुए में एज इट इज, जो भी कर रहे थे वैसे के वैसे। कितनी बड़ी इबरत है, अल्लाह ताला ने ऐसे मिटा दिया इस शहर को सफाए हस्ती से कि जैसे कि कभी था ही नहीं। और हिस्ट्री में ये लिखा हुआ कि ये शहर गुनाहों का और बदकारियों का सेंटर था। इतना जिना आम था, इतनी बदकारी के अड्डे थे यहाँ पे कि जिनको गिना भी नहीं जा सकता। ऐसी औरतों ने अपने घरों के बाहर मर्दों के उजवे तनासुल लटकाए हुए थे। इसी तरह वो समझते थे कि जो ये इस तरह से इन प्राइवेट पार्ट्स को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, इनकी नुमाइश करनी चाहिए। ये देखो कैसे अल्लाह ताला ने उनको, और फिर इनके अंदर यही कौमे लूत वाला भी काम था। तो आतिशफिशां ने सारा शहर आनन फानन मिटा दिया। और देखिए कैसा अलमिया है कि वो जो लावा था उसका शोर सुन के भी कोई भागा नहीं। इतना इसका मतलब वो अपनी मस्ती में इतने मगन थे, या ऐसे अचानक आया कि उनको ख्याल ही नहीं आया कि हम कहीं भाग ही जाएं। एक खानदान है, खाना खा रहा था उसी हालत में पत्थर बना हुआ, और अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह लावे से ना जो जम गए हैं ना लोग, वो अस्तग़फिरुल्लाह अक्सर जोड़े हैं जो जिंसी फेल में मशहूल थे, वो उसी तरह है। अक्सर कपल्स जो थे वो ये होमोसेक्सुअल थे, नौजवान लड़के और लड़कियां। तो खुदाइयां करने से ये निकले हुए जो इंसान हैं, इनके चेहरे बिल्कुल सही सालिम, इनके चेहरों पे बौखलाहट और परेशानी बिल्कुल क्लियरली नजर आ रही है। और ये समझ नहीं आती कि ये इतने हजारों लोग किस तरह कोई चीज देखे और सुने बगैर मौत के इंतजार में पड़े रहे, उनको कोई पता नहीं चला कि ऐसे कोई चीज आ रही है। जैसे अल्लाह ताला ने सूरह यासीन में फरमाया ना, इन कानत इल्ला सैहतन वाहिदतन फइदा हुम खामिदून, वो बुझ के ही रह गए, बस एक चिंगाड़ थी और वो बुझ के रह गए। तो ये तो हिस्ट्री बताती है कि ऐसे लोग गुजरे हैं, कई बस्तियां तो कायम हैं, कई जमीनों के नीचे पता नहीं कितनी चली गई हैं जिनका हमें नहीं पता है दुनिया में, और कितनी कौमें तबाह हुई, कितने के पास पैगंबर आए, 1,25,000 पैगंबर आए, कहाँ कहाँ आए, क्या क्या हुआ, हम नहीं जानते हैं। तो ये बहुत बड़ी इबरत है, बहुत बड़ी इबरत। और इंसान अगर फिर भी ना समझे तो क्या चीज उसको समझाएगी, ये तो हमारे सामने की बातें। और अल्लाह ताला ने फरमाया वमा जलमना हम, हमने इन पे जुल्म नहीं किया, वलाकिन जलमू अनफुसहुम, इन्होंने अपनी जानों पे खुद जुल्म किया, खुद इन्होंने वो काम किए जिससे इन्होंने अजाब को दावत दी। देखिए अल्लाह ताला को नहीं ये शौक, मा यफअल अल्लाह बिअज़ाबिकुम इन शकर तुम आमन तुम, अल्लाह ताला तो फरमाता है अल्लाह क्या करेगा तुम्हें अजाब देके, अगर तुम शुक्र करो और ईमान लो। अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि उसको कोई शौक है। तो अपने आप पर खुद इंसान जुल्म करते हैं तो तभी संजाम को पहुंचते। अब कोई सोचता होगा ना, हाय इन बेचारों का क्या कसूर, हाय इनके साथ क्यों ऐसे हो गया, नहीं ये मत सोचो, इसलिए कि अल्लाह जुल्म नहीं करता। जरूर उस कौम के अपने कुछ ऐसे काम होते हैं जिनकी वजह से उन पे तबाही आती है, वो भी एक दिन में नहीं आ जाती, बड़ा अरसे तक अल्लाह ताला उनको मोहलत देता है, लेकिन जब वो नहीं संभलते तो फिर उसके बाद एक दिन इनाफ हो जाता। फमा अगनत अनहुम आलिहतुहुम अल्लती यदउन मिन दूनिल्लाही मिन शय, नहीं काम आए उनको उनके इलाह जिनको वो पुकारते थे अल्लाह के सिवा, कुछ भी जरा सा भी इनके काम नहीं आए वो, जिनको वो मुश्किल कुशा कहते थे, हाजत रवा कहते थे, जिनको वो अपना समझते थे कि ये कुछ कर सकते हैं हमारे लिए, उनमें से कोई भी काम नहीं है। देखिए आज आप जिन जो कायम है बस्तियां, चलो जो ऐसी नहीं आपको पता वो अलग बात है, लेकिन जो कायम है आज तक, समूद की बस्ती के देख लें आसार आप, ये फिरौन के आसार आप देख लें, इस तरह और बस्तियां हैं जिनको पेरिश्ड नेशंस कहते हैं, वो उन बस्तियों में क्या हुआ, वो कैसे इबरत के निशान बन गए, आज दुनिया के सामने आ गया ना, डेड सी है सबके सामने, सबको पता है, ऐसे कौम जो मुसलमान नहीं भी है उनको भी पता है, फिर क्यों नहीं इबरत लेते हैं? अस्तग़फिरुल्लाह। आकाफ के बारे में, ये जो जहां पे आद, कौमे आद जहां पे गर्क हुई भी है, वो वहां पे कोई चीज ठहर नहीं सकती, सब चीजें रेत के अंदर चली जाती हैं, सफेद रंग की रेत है, कुछ भी वहां पे फेंका जाए ना वो रेत के अंदर डूब जाता है। कैसे अल्लाह ताला ने इबरत बना दिया इन जगहों को, कुछ समझ नहीं आती इसे। अल्लाह हू अकबर। इसका मतलब कि जिनको भी ये पुकारते थे, किन्हीं की तो इबादत किसी की तो करते थे ना, वो इनको कोई भी ना बचा सका। लम्मा जाए अमरु रब्बिक, जब तेरे रब का हुक्म आ गया तो क्यों नहीं कोई आए इनको बचाने, क्यों नहीं कोई खड़े हो गए इस सारे तूफान और इस सब चीज के आगे, क्यों नहीं किसी ने, चलो और बचा नहीं सकते थे इनको, वॉर्न नहीं कर देते कि भाई ऐसी कोई बड़ी तबाही आने वाली, क्यों नहीं ऐसा किया? इसका मतलब सब झूठे थे। ये अकली दलील है इस बात की कि ये सारे जितने भी माबूदाने बातें लेना, जिनको भी अल्लाह के सिवा पुकारा जाता है, ये किसी काम नहीं आने वाले, इस दुनिया में नहीं काम आए तो आखरत का तो मामला बहुत ही बड़ा है, वहां पे कैसे काम आएंगे, यहां पे इनकी बेबसी पता चल गई। वमा जादूहुम गैर ततबीब, और नहीं उन्होंने ज्यादा किया उनको मगर हलाकत में, सिवाय हलाकत के किसी चीज, इसलिए कि इबादत तो किसी की इसलिए की जाती है कि इससे यानी हमें मुश्किल वक्त में हमारे काम आ जाए, ये हमारी ये हमें कोई सवाब मिले इससे, कोई अच्छी जजा मिले इससे, उन्होंने तो उनको सवाब तो दूर की बात, उनको हलाकत तक पहुंचा दी, तो ज्यादा ही की हलाकत उनकी, कमी तो नहीं कोई की, उनकी सजा को बढ़ाया ही है इस शिर्क ने। अब ये ना कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स आप देखेंगे सूरह की, अब ना क्योंकि सारी बस्तियों के हालात आपको बता दिए गए, तो अब ये जो आगे हैं ये कंक्लूजन है कि जब एंड हो रही है सूरह, तो अल्लाह ताला अब बता रहे हैं कि हमने नहीं इन पे जुल्म किया, इन्होंने अपने आप पे जुल्म किया, और ये बहुत बड़ी निशानी है कि आप ये सोचें कि कहाँ थे उसके उस वक़्त इनके माबूद, कहाँ थे, क्यों नहीं बचाने आए। वकदालिक, और इसी तरह अख्दु रब्बिका, पकड़ होती है तेरे रब की, इदा अखदल कुरा वहिया जालिमतुन, जब वो पकड़ता है बस्तियों को कि वो जब जालिम होती है ना, तो तेरा रब इसी तरह बस्तियों को पकड़ता है, इतनी ही बस्तियों को उसने पकड़ा, यानी अल्लाह ताला मोहलत देता है और मोहलत देता है, लेकिन जब पकड़ता है तो फिर वो छोड़ता नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, बेशक अल्लाह ताला जालिम को ढील देता रहता है, हत्ता कि जब उसको पकड़ लेता है फिर मोहलत नहीं देता, ये बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। तो जब इंसान बुरे काम कर रहा होता है ना, जब कोई कौम गुनाहों में पड़ी थी, उसको लगता है कि नहीं ये कोई पकड़ नहीं आनी, देखो हम कब से तो कर रहे हैं, किसने हमें पकड़ा, और इससे वो और दलेर हो जाते हैं, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, लेकिन जब होता है ना तो फिर कोई छुड़ा नहीं सकता, वो ये नहीं सोचते कि ये हमारी बुराइयों के बावजूद अगर हमें नहीं पकड़ा जा रहा, तो इसका मतलब अल्लाह ताला हमें वॉच कर रहा है, लेकिन उसका सब्र है, उसका हिल्म है, और उसने हमें मोहलत दी हुई है। ये जो हम सुबह को उठ जाते हैं ना अपने गुनाहों के बावजूद, तो सुबह को जो उठ जाना है इसके ऊपर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह हम तो इस काबिल भी नहीं थे, हमारे गुनाह इतने अल्लाह कि हम इस काबिल भी नहीं थे कि तूने एक और दिन की हमें मोहलत दे दी, एक और दिन हमें जीने का हक दे दिया, जो कुछ दुनिया में हो रहा है इसके बाद तो मैं और आप हमारे जैसे लोग भी कहते हैं कि अब तो कयामत ही है बस, जो अल्लाह तूने फिर भी हमें छोड़ दिया। तो तेरी तारीफ है और तेरा ही शुक्र कि तू हम जैसों को भी जीने का मौका दे रहा। लेकिन ये ना समझना कि ये हमेशा के लिए इस दुनिया में या तो पकड़ आ जाती है, नहीं तो आखिरत में तो है ही। पर इंसान ये भूल जाता है कि इन अखदहु अलीमुन शदीद, अल्लाह तआला की जब पकड़ आती है ना तो बड़ी दर्दनाक है और बड़ी शदीद है, बड़ी सख्त है। फिर उस पकड़ से कोई निकल नहीं सकता। सोचते हैं लोग के जैसे पैगंबर बातें करके चले गए, लोगों ने सोचा ये क्या कमजोर से तो लोग हैं, ये तो हमारे अंदर कोई जोर और ताकत तो रखते नहीं है, पता नहीं जैसे ये हैं ऐसे ही नाउज़ु बिल्ला के वो सोचते कि इनका रब भी ऐसा ही है, क्या हमें नहीं पकड़ सकेगा, या हम बड़े ताकतवर हैं, या हमारी बड़ी तरक्कियां हैं, ये कैसे ऐसे हो सकता है। ये बड़ा शैतान का झांसा है। जो दिन भी अल्लाह ने दिया है ना और हमें जीने का मौका मिला है ना, इस पे उसका शुक्र अदा कीजिए, इसके ऊपर उसके आगे और झुक जाए, क्योंकि जो जुल्म है वो इस कदर बढ़ चुका है इस दुनिया के अंदर। इंसान परेशान है, इंसान खुद के ये हो क्या रहा है। तो जो अल्लाह ताला ने जो फरमाया कि जो अल्लाह की पकड़ है ना, जब वो पकड़ता है बस्तियों को तो उसकी पकड़ बहुत शदीद होती है, उसकी पकड़ को आवाज ना दो, यानी फिर तुम बच नहीं सकोगे। मत बुलाओ, मत दावत दो अजाब को। इन्ना फी ज़ालिका लआयत लिमन खाफ अज़ाब अल-आखिरा, इसमें बड़ी निशानी है उसके लिए जो डरे आखरत के अजाब से। जो डरता है ना अपने अल्लाह के आगे खड़े होने से, उसके लिए बड़ी निशानी है। जो आखरत के अजाब से डरता है उसके लिए बड़ी निशानी, क्योंकि जो बंदा ये देखता है ना वो सोचता है कि अल्लाह दुनिया के अंदर ऐसी पकड़ और इतनी शिद्दत और इतनी दर्दनाक इनका अंजाम हुआ है, कि जैसे हमने सूरह आराफ में शुरू में पढ़ा था ना कि जब लोगों के ऊपर पकड़ आती थी तो फिर चीखते थे, रोते थे कि हाय हम ही जालिम, हाय हम ही जालिम, हमने गलत किया। तो इसके अंदर निशानी है कि ये दुनिया के अंदर अगर ऐसी पकड़ आ सकती है, अल्लाह आखरत में की पकड़ कैसी होगी। फिर जो फिक्र करता है ना आखरत की, उसके लिए तो बड़ा ही इसके अंदर सबक है, इन तबाहियों में, इन कौमों के वाकयात में, या ये आखरत का अजाब फिर कैसा होगा। एक चीख से इनका ये हाल हो गया, ये कैसे इनको उठा के ऊपर ले जाके नीचे पटका गया, कैसे इनके ऊपर पत्थरों की बारिश हो गई, कैसे इनमें चीखों पुकार हुई होगी, कैसे ये बेखबर थे और इनकी पकड़ आ गई। तो लेसन है इसमें, जो कयामत के दिन के अजाब से डरता है, और वाकई जो डरता है उस दिन के आने से और उस दिन के अजाबों से, जिसको डर लगता है ना, वाकई वो ही सिर्फ इससे सबक लेगा। वो जिसको परवाह ही नहीं, वो तो कितनी दफा कुरान पढ़ के भी, कितनी दफा समझ के भी, और समझ भी आती है, बड़े बड़े पीएचडी डिग्रियां हैं, ये है, बड़े इंटेलेक्चुअल समझे जाते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है फर्क पड़ता। वो कई लोग हैं इनके ऊपर, इनकी खुदाई करते हैं, इन कौमों के आसार निकाल रहे हैं और उनके ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं और म्यूजियम्स में रखे जा रहे हैं और म्यूजियम में आके लोग देख रहे हैं और हिस्ट्री लोग पढ़ रहे हैं और ये सब चीजें उनके सामने आती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आखरत के दिन पे ईमान नहीं और उस दिन के अजाबों से का डर नहीं है। अल्लाह अगर हम भी इसी रविश पे चल रहे हैं तो हमारा क्या अंजाम होगा। अल्लाह अगर हमने ये लीडर बनाए हुए इस तरह के, तो हम इनके पीछे अगर जाएंगे तो हम किधर पहुंचेंगे। और हमारे करतूत अगर ऐसे ही हैं तो हमें और इनमें क्या फर्क रहेगा। तो इबरत है, बहुत इबरत है। मगर हम अक्सर जब आखरत के दिन के ऊपर ईमान कमजोर होता है ना, तो बस फिर टीवी पे बैठ के डिस्कशन ही कर रहे होते, फलां जगह सुनामी आ गई, फलां जगह जलजला आ गया, वो ऐसे हो गया, इतने लोग मर गए, इतने लोग ऐसे हो गए, और बस चलो एक न्यूज़ है, बस न्यूज़ है, इबरत नहीं है हमारे लिए। आज देखें दुनिया में जितनी भी कोई ऐसे वाकयात हो रहे सब न्यूज़ बन चुके हैं। न्यूज़ आई सुनी, हम खाते पीते वो न्यूज़ सुन रहे हैं और फिर न्यूज़ बंद हो गई, हम जाके आराम से सो गए। इसमें क्या सबक है? इसमें हमारे लिए क्या मैसेज है? इसकी क्या इबरत का पहलू है? उसके ऊपर कभी गौर नहीं करते। मगर वो लोग जो डरते हैं ना आखिरत के दिन के आज़ाब से, उनके लिए निशानी है और वो लेसन लेते हैं इससे, अपनी जिंदगियों को फिक्स करते हैं। ज़ालिक यौम मजमूअ, ये एक दिन है जमा किए किए जाएंगे, जिस दिन ऐसा दिन है ये, कौन जमा किए जाएंगे? हाँ जितने जानदार हैं ये कह लें, मजमून लहुन्नास वास्ते इसके लोग, लोग इंसान जमा किए जाएंगे, जितने इंसान हैं इसके अलावा भी कोई जमा किया जाए, हाँ जिन भी जानवर भी चरिंद परिंद भी सब जमा किए जाएंगे। हाँ मगर उनके लिए बाकी मखलूक के लिए जन्नत जहन्नम नहीं है सिवाय जिन्नो इंस के, तो सबको एक जगह जमा किया जाएगा। देखिए इसका नाम, इस दिन का नाम यौम मजमूआ भी है, जमा किए जाने का दिन। वदालिका यौम मशहूद, और ये दिन एक दिन है हाजिरी का, जिस दिन हाजिरी होगी। आप देखें दुनिया में आप लोग, ये छोटी सी क्लास होती है तो हम हाजिरी लेते हैं, हाजिर क्योंकि हमें क्या पता भाई कोई आया या नहीं आया, तो हाजिरी लगाई जाती है, हाजिरी के रजिस्टर रखे जाते हैं और फिर सारा उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। सुभान अल्लाह, इतनी मखलूक होगी, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिर तक, कयामत तक के आने वाले इंसान, चरिंद परिंद जानवर जिन, जिन भी जब से अल्लाह ने उनको बनाया तो इंसानों से भी पहले जिन मौजूद थे, तो जिन्नात जितने तब से लेके कयामत तक, बीच में ही शैतान बीच में ही और जिन्नात नेक और बद सारे के सारे वहां खड़े हुए, लेकिन कोई अटेंडेंस लेने वाला नहीं है। क्यों? इसलिए कि कोई बाकी बचा ही नहीं। अटेंडेंस तो इंसान लेते हैं ना जिनको पता नहीं है कौन आया कौन नहीं आया, तो आपका एक एक का नाम बोल बोल के हाजिरी ली जाती, वहां पे हाजिरी की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला जानता है कोई भी ऐसा नहीं है जो बच जाए उस दिन, हशर के मैदान में खड़े होने से बच जाए कोई कहीं जा। देखिए अब हम सोचते ना इतना हजूम है, किसी को क्या मेरा पता चलेगा, बीच में से छुप के चली जाऊं, बीच में से रह जाऊं, बहुत बड़ा मजमा जाना हो तो उसकी अटेंडेंस भी लेनी मुश्किल होती है, तो कोई बात नहीं अगर मैं पीछे भी रह जाऊं तो किसी को क्या पता चलना है ना। तो आप देखें 2-4 लाख का लोग खड़े हों तो क्या पता चलेगा आप उसमें हैं या नहीं है, लेकिन वो दिन देखें सुभान अल्लाह कैसा है कि इतनी मखलूक है खड़ी हुई, लेकिन कोई ऐसी नहीं जुर्रत कर सकता या कोई ऐसी ताकत नहीं रखता कि वो कहीं भाग सके कहीं छुप सके। या माशर अल जिन्नी वल इंसी इन इस्तता तुम अंता फुदु मिन कतार समावाती फुदु ला या फुदु ना इला सुल्तान, अल्लाह ताला ने फरमा दिया ना कि ए जिन्नो इंस अगर तुम्हारी ताकत है ना तो तुम भाग के देखो, इस जमीन और आसमान के किनारों से निकल के देखो, तो यहां से नहीं निकल सकते आप। जिन्नात को बड़ा ताकतवर समझा जाता है, नहीं निकल सकते, कयामत के दिन कौन छुपेगा कौन कहीं भागेगा, कौन किसी जगह जाके पनाह ले लेगा, किसी जगह जाके आपका अगर हो कि भाई इंसान किसी गार में छुप जाए कि समुंदर के नीचे चला जाए कहीं तो जाके छुप जाए, कुछ होना ही नहीं है, फ्लैट जमीन और उस पे सब खड़े होंगे। वो मानु अखिर हु इल्ला ली अजलिन मादूद, और नहीं हमने नहीं हम ताखीर कर रहे उसमें मगर एक मुकर्रर मुद्दत, जो गिनी हुई है मुद्दत, मुकर्रर है मुद्दत, उस की वजह से अभी ये जो पोस्टपोन हो रहा है ना, ये जो आगे डिले हो रहा है, डिले हो रहा है, ये वक्त क्यों नहीं आ रहा, तो वो इसलिए है कि इसका एक फिक्स डे फिक्स टाइम है, उस पे ही उसने आना है, वो तय है, किसी को पता नहीं है। लोग कहते थे ना कि क्यों नहीं आता फिर ये दिन अजाब का या कयामत का, इसलिए कि एक दिन अल्लाह ताला ने तय किया। انہم یرونہو بعیدہ ونراہو قریبہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج میں فرمایا نا, وہ اس کو بڑی دور دیکھتے ہیں, ابھی کہاں قیامت, ابھی تو بڑی دور ہے اور ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں. کیونکہ انسان کی موت بھی اس کی قیامت ہے, وہاں سے اس کی قیامت شروع ہو جانی ہے. تو تمہیں لگتا بہت دور ہے, تمہیں لگتا بہت دور ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں, قریب ہی ہے. قریب اتنی کہ بعض دفعہ انسان اگلا قدم رکھتا ہے نا تو وہ موت آ جاتی ہے. قریب اتنی کہ کتنے ہی ہم واقعات سنتے ہیں, فلاں اچھا بھلا تھا, دیکھیں آپ نے بھی سنے ہوں گے, میں بھی سنتی ہوں, اچھا بھلا تھا, اچھا بھلا دفتر گیا, اچھا بھلا ایسے تھا, رات کو یہ کہہ کے گیا, رات کو یہ کہہ کے سویا, کل یہ کروں گا, وہاں لے کر جاؤں گا, ایسے ہوا ایسے ہوا, اور ایک دم اس کو پتہ نہیں کیا ہوا, موت آ گئی. دیکھیں تم اس کو دور کہتے ہو نا, اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں وہ قریب ہے. کوئی سویا سویا فوت ہو گیا, اس نے بھی کتنے پلان کیے ہوئے تھے, کل یہ کروں گا یہ کروں گا, وہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت فکس کیا ہوا ہے. یہ جو ڈیلے ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اس وقت ہی آ کے رہنا ہے, چاہے موت ہے چاہے قیامت ہے. یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنی, جس دن پھر وہ آ گیا نا دن, جو جس کا ٹائم فکسڈ ہے, وہ دن آ گیا یعنی قیامت کا, تو کوئی نفس بات نہیں کر سکے گا, کوئی بھی کلام نہیں کر سکے گا, الا بإذنی, مگر ساتھ اس کے اذن کے, اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دے تو وہ بول سکے گا. وہ ہے نا سورہ نبا میں, یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا, جس دن جبرائیل علیہ السلام بھی اور فرشتے بھی سارے صف در صف کھڑے ہوں گے, لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا, اس دن کوئی بات نہیں کر سکے گا مگر جس کو رحمانی اجازت دے, اور وہ بات بھی سٹریٹ سیدھی کرے, صحیح بات کرنے والا. یعنی یہ جو آج دنیا کے اندر باتیں ہیں نا, میں تو یہ کہہ دوں گی اللہ تعالیٰ کو جا کے, میں تو کہوں گی اللہ فلاں نے مجھے یہ کہا تھا تو میں نے کیا ہے, میں نے تو تمہاری وجہ سے کرنا, میں نے تو اللہ کو کہہ دینا. یہ کتنی بچوں والی بات ہے, میں یہ اللہ کو کہہ دوں گی. اس دن بولتیاں بند ہو جانی ہیں, اس دن کسی کی زبان سے تو ایک کلمہ بھی نہیں نکلے گا. اس دن اتنی مخلوق کھڑی ہوئی ہے کہ آپ دیکھیں گے جن اور انسان اور چرند اور پرند, یہاں پہ کلاس روم ہی ہو کتنا شور مچ جاتا ہے, ٹیچر بچوں کو چپ کراتی ہے پھر بھی نہیں چپ ہوتے. وہ کیا دن ہوگا کہ جو بچوں کو بھی بوڑھا کر دے, جس دن کوئی آواز ہی نہیں ہوگی سوائے ہمس کے, سانس کی آوازیں ہوں گی بس, دیٹس اٹ. کیسا مبہوت کر دینے والا دن ہوگا, کیسا انسان کو جیسے جیسے کہیں کہ پیرالائز کر دینے والا دن ہوگا کہ وہ کچھ بول نہیں سکے گا, کچھ کہہ نہیں سکے گا, ایک آواز بھی نہیں نکالے گا. جب انسان کہ وہ بڑا خوف بھی ہوتا ہے نا, تو دیکھا اپنی آواز نہیں نکلتی, چیخ مارنا چاہے چیخیں نہیں نکلتی. اس دنیا کے چھوٹے چھوٹے خوف ہیں, وہ دن کیسا خوف ہوگا, اس دن میں کیسی انسان کی حالت ہوگی کہ کوئی انسان چوں بھی نہ کر سکے. اور حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بول نہیں سکے گا سوائے انبیاء کے, انبیاء کے سوا کوئی بات نہیں کر سکے گا, کوئی بول نہیں سکے گا. اور وہ بھی کیا بولیں گے, کیا آپ کیا سوچتے ہیں کہ انبیاء بھی کیا کہہ رہے ہوں گے؟ وہ بھی صرف کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی, ان کے پاس بھی اور کوئی بات نہیں ہوگی. اللہ اکبر, وہ بھی صرف اپنے آپ کو بچانے کی یہ کہہ رہے ہیں, اللہ مجھے بچا لے, اللہ مجھے بچا لے. تو نبی کلام کریں گے اس دن اللہ کی اجازت سے, اللہ کے اذن سے. تو کوئی خسر پسر نہیں ہوگی, کوئی یہ باتیں نہیں ہوں گی کہ میں فلاں سے کچھ پوچھ لوں, یا فلاں کوئی برے حالت میں ہے تو اس کو کوئی تسلی دے دوں, یا میں کوئی किसी से कोई मशवरा कर लूं, अब क्या कहूं यहां पे, सांस की आवाज होगी, जैसे बहुत सारे लोग एक जगह जमा हो जाए ना तो सांसों की आवाजें आती हैं। और अगर रसूल ये कहे अल्लाहुम्मा सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लिम, तो फिर बताएं और लोगों के होलाहट का और लोगों की घबराहट का क्या आलम होगा, अगर रसूलों के ऊपर ऐसी घबराहट है, ऐसी ऐसे कि वो ये बात कह रहे हैं, उनकी परेशानी अगर ये। बहुत बड़ा दिन है वाकई, यौमन आज़ीम है वाकई, बहुत बड़ा दिन है। फमिनहुम शकी व सईद, तो उसमें बाज बदबख्त होंगे और बाज नेक बख्त होंगे। अल्लाह ताला हमें सईद लोगों में शामिल फरमाना। ये दुनिया में तो आज बड़े बड़े बदबख्त खुशबख्त बने हुए हैं, और खुशबख्त जो हैं वो बदबख्त कहलाते हैं। यहाँ पे तो ऐसा मामला है ना, सभी कोई कोई खुशबख्ती और नेक बख्ती और बदबख्ती का कोई जो मयार है वो ही नहीं है। जिसके पास पैसा है वो खुशबख्त है, जिसके पास पैसे नहीं वो बदबख्त है, जिसके बड़ी ऊंची कुर्सी मिल गई वो इलेक्शन जीत गया वो बड़ा खुशबख्त है, वो जो हार गया वो तो बड़ा बदबख्त है, जिसके बच्चे बड़ी 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 पोजीशंस पे पहुंच गए बड़े लायक बन गए वो बड़ा खुशबख्त है, और जिसके बच्चे नालायक निकल आए ज्यादा पढ़ नहीं सके बड़े बदबख्त है, जिसका कारोबार बड़ा चमकता है वो खुशबख्त है बड़ा 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 बिजनेसमैन है भाई, और जिसका कारोबार नहीं चला वो बदबख्त है। ये है बदबख्ती और खुशबख्ती के मेयार, इसको आप कहते हैं। उस दिन पता चलेगा बदबख्ती क्या होती है और खुशबख्त कौन लोग होते हैं। तो ये आज के जो डेफिनेशंस है ना लकी की, वेरी लकी, ही सो लकी, ये लकी नहीं है, वो दिन है लकी होने का, या बिल्कुल जो डूम डोंगे लोग उनका। तो इस दिन तो बड़े बड़े खजाने इंसानों को नहीं बचा सकेंगे बदबख्ती से, और इस किसी का फकर उसको खुशबख्त होने से नहीं रोक सकेगा। फअम्मा अल्लज़ीना शकू, तो रहे वो लोग जो बदबख्त हुए, फफिन्नार, तो वो आग में होंगे। ये है अंजाम, ये है, ये होते हैं बदबख्त। आप किसको बदबख्त समझते हैं, सूखी रोटी खा रहा है वो बदबख्त है? नहीं, ये है बदबख्ती कि जिसका अंजाम आग हो। यहां पे क्लियर हो गई ना डेफिनेशन, कौन होता है बदबख्त, चाहे वो दुनिया में बड़ा ही कामयाब क्यों ना समझा जाता हो, चाहे वो दुनिया में कितनी बड़ी पोजीशन पे क्यों ना हो, अगर आखरत में वो आग में चला गया तो वो सबसे बड़ा बदबख्त है, उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं, जिसको दुनिया में लोग आइडियलाइज करते हैं, उसकी बड़ी फॉलोइंग है, लोग उसको देखते हैं तो बड़े इंप्रेस हो जाते हैं, हाय कितना खुशकिस्मत है, ऐसे बोलते हैं। अगर वो आग में चला गया कयामत के दिन तो लूजर है, और जिसको आप यहां पे समझते हैं हाय बेचारा बेचारा कह के उसको कहते हैं ना, हाय बेचारा, हाय बेचारों के साथ क्या हो गया, आए कितने बदकिस्मत लोग हैं, वो उस दिन जन्नत में चले गए ना, तो उस दिन उनसे ज्यादा सईद कोई नहीं, खुशबख्त कोई नहीं। फअम्मल्लज़ीना शकू फ़िन्नारि लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन व शहीक, और उस आग में क्या होगा, आग तो है ही, अजाब तो है ही, अगर उसके अलावा जफीर और शहीक है, क्या होती जफीर और शहीक, चीखो पुकार, गधे की आवाज, जफीर कहते हैं गधे की आवाज जो बिल्कुल शुरू में होती है, जो उसको कहते हैं जफीर,
और शहीक चीखना या एंड की जो उसकी आवाज है वो, यानी एक अजीब सी गधे की आवाज होती है ना, उसको सुन के भी इंसान को बड़ी बेचैनी सी होती है। एक सांस अंदर लेके जाता है, फिर बाहर निकाल के फिर चीखता है, फिर अंदर लेके जाता है, फिर बाहर। इस तरह की कभी लो कभी हाई पिच वॉइसेस होंगी, कभी ऊंची हो रही होंगी, कभी नीची, कभी आहें होंगी, कभी चीखना होगा। ये लोगों का हाल होगा वहां पे। और आप अंदाजा कीजिए कि अगर एक इंसान को कोई भी अजाब ना हो, तब भी जो चीखों की आवाज है ना, इंसान के अंदर इतना इज़्तिराब पैदा कर देती है कि वो बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। किसी अस्पताल में आप कभी, अल्लाह ताला माफ करे, कभी रहे हो तो रात को अगर किसी पेशेंट के चीखने की सिर्फ आवाज आ जाए ना दर्द से, या किसी डॉक्टर के उसमें जाए और वहां पे किसी की चीख की आवाज सुनने, तो वहीं पे उल्टे पैर वापस आ जाते हैं, इतना डरते हैं हम। तो सोचे कि वो वहां पे पड़े हुए हैं और अपनी तकलीफ तो चल रही है उनकी, उसके अलावा ये एक और तकलीफ है कि वहां पे सिवाय इस शोर के और कुछ नहीं होगा कि चीखें होंगी, जिसमें किसी को कैसे कोई चैन आ सकता है, कैसे सुख मिल सकता है। किसी की हाय हाय भी सुन लेना तब भी परेशानी हो जाती, और वहां पे हर तरफ कैसा सीन है कि लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और तकलीफ में, और टॉर्चर उनको हो रहा है। दुनिया में सिर्फ लाइव नहीं, सिर्फ वो खबरों में भी या उसमें कोई सीन ऐसा आने लगे ना, तो कहते हैं जो कमजोर दिल हजरात है वो ना देखें, बच्चे ना देखें, कमजोर दिल हजरात ना देखें। क्यों? इसलिए कि वो सीन देखने से भी ना इंसान का दिमाग शल हो जाता है, दिमाग पे असर हो जाता है, इंसान टॉर्चर को देख नहीं सकता, उसकी अंदर तो इतनी पावर नहीं होती, लेकिन वहां पे टॉर्चर देखेंगे भी और इन चीखों को सुनेंगे भी। इंसान कान बंद कर लेता है किसी की ऐसी चीखों की, धाड़ों की आवाज आ रही, तो वहां पे वो इस टॉर्चर को भी बर्दाश्त करेंगे। और चीखना चिल्लाना कब होता है, कब होता है ये धाड़ना, कब होता है ये जब इंतहाई दुख हो, इंतहाई तकलीफ हो, तो वो वहां पे इतने रंज में होंगे, इससे पता चलता है कि वहां का सीन क्या है। वहां पे कोई हंसी मजाक नहीं, वहां पे कोई ऐसा नहीं हो रहा हो कि चलो यूज टू हो गए, आप इससे यूज टू नहीं होंगे। वो जहन्नुम का माहौल कैसा होगा जहां पे चिल्लाना है, दोजखी सिर्फ चीखे मार रहे हैं, और ये उनका रंज, उनका गम, उनके रिग्रेट्स, उनकी जो टॉर्चर उनको मिल रहा है, उस सब को डिपिक्ट करता है ये दो वर्ड्स जो है ना, ये हमें बता रहे हैं कि उनकी कंडीशन सोचेंगे क्या होगी। कि कोई बात तो किसी वक्त उनके मुंह से कोई बात नहीं निकलेगी, या कोई खामोश नहीं होंगे, दुख में और गम में, अंदर का भी होगा, फिजिकल भी होगा, मेंटल भी होगा। जैसे एक जगह आता है ना मुस्तदरक हाकिम में, कि जहन्नमी इतना रोएंगे, इतना रोएंगे कि उनके आंसुओं में कश्तियां भी चलाई जा सकती हैं, और जब उनके आंसू थम जाएंगे तो खून बहने लगेगा आंखों से, इतनी यानी वो तकलीफ में होंगे। और ये तकलीफ इस टॉर्चर की तो है ही, मगर जिंदगी को आग लगा दी इसकी तकलीफ होगी, ये क्या कर बैठे इसकी तकलीफ होगी, इस नाकामी का गम भी तो होगा। दुनिया में इंसान एक इम्तिहान से फेल हो जाए तो कितने दिन लोग डिप्रेशन में पड़े रहते हैं, आए आए मैं फेल हो गए, ये कितना बड़ा फेलियर है, इतना बड़ा फेलियर। ये कोई उससे फेलियर नहीं कि कोई जॉब नहीं मिलेगी, या ये फेलियर वो नहीं है कि अच्छा कि मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, या ये वो फेलियर नहीं है कि अब फिर मुझे, मैं कमाऊंगी कहां से, या मैं खाऊंगी क्या, या मेरे करियर में तरक्की नहीं होगी, ये वो फेल, ये तो वो फेलियर है कि इसके बाद कोई कामयाबी नहीं, ये वो फेलियर है जो जिंदगी खत्म करने वाला है, ना मौत आएगी ना जिंदा है। ये वो फेलियर नहीं है जिसमें किसी ऐसी दुनियावी किसी चीज का नुकसान हो जाए, तो बस अपने आप को झुलसा दिया, अपने आप को आग में डाल दिया, इससे बड़ी क्या और बात हो सकती।
और ये जिंदगी है ना, इसमें ये बड़ी कीमती है, इसमें अभी मौका है इस अंजाम से बचने का कि हम अल्लाह शकी में ना हो, अल्लाह ताला हम इन बदबख्तों में हम ना शामिल हो, इस अंजाम से खुद को बचाने का यही एक मौका है, यही एक फर्स्ट एंड लास्ट चांस है। अल्लाह अकबर, खालिदीन फीहा, उसमें हमेशा रहने वाले हैं, मा दामत इस्समावात वल अर्द, जब तक कायम रहे आसमान व जमीन। अब यहाँ पे मुश्किलातुल कुरान में से ये एक जगह है जिसके ऊपर बास जो मुफस्सिरीन है उन्होंने ये लिखा कि अच्छा जब तक कायम है आसमान व जमीन, इसका मतलब है कि जब जितनी देर आसमान व जमीन की जिंदगी यानी जितनी देर तक वो कायम थे तब तक वो जहन्नुम में रहेंगे, उसके बाद निकाल लिए जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये आसमान व जमीन दुनिया के नहीं है, दुनिया के आसमान व जमीन खत्म हो जाने वाले, वो तो उस दिन के आसमान व जमीन होंगे, वो उस जगह के आसमान व जमीन होंगे। और इल्ला माशा और रब्बुक, मगर जो चाहे तेरा रब, यानी अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो इनमें से बाज वो लोग भी होंगे जिनको अल्लाह ताला निकाल लेगा। ये कौन लोग होंगे? जिनमें कोई राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा उनको अल्लाह ताला इसमें से निकाल लेगा। तो इल्ला माशा रब्बुक, तेरे रब की मर्जी, वो जैसा चाहे कहे करे, इन्ना रब्बा का फ़ालु लिमा युरीद, अल्लाह ताला जो इरादा करे ना वो कर देता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं। तेरा रब बहुत कर गुजरने वाला है। जो तो बात आती है ना, जो तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफा बीमार थे तो मरज़ुल मौत के उसमें थे, तो या उससे पहले की कोई बीमारी थी, तो किसी ने कहा कि आप इलाज क्यों नहीं कराते आप, तो फरमाया फ़ालु लिमा युरीद, उसने जो जो वो चाहता है ना वो उसने कर गुजरना, यानी आप तो आगे मौत ही है। ना रब्बा का तेरा रब कर गुजरने वाला, जो वो चाहता है, ना उसको कोई रोकने वाला, ना उससे कोई पूछने वाला, ना उसको किसी से पूछने की जरूरत है या इजाजत लेने की जरूरत है, फुल अथॉरिटी है उसके पास, जिसको जिस हाल में चाहे रखे, जिसको चाहे निकाल ले वहां से, जिसको चाहे उसमें रहने दे, कौन पूछेगा उससे, ये तो तेरे रब की मर्जी है। तो वो निकालना भी उनका हो जिन्होंने कोई ईमान की, जिनके अंदर कोई रमक हो, बाकियों का तो ये जलने का अमल और ये चीखों पुकार चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। और ये भी है कि वहां पे बाज जो लोग हैं उन जैसे वो सोचते हैं कि ये खत्म हो जाएगा, हालांकि ये इल्ला माशा रब्बु का जो मतलब है कि कुछ को अल्लाह ताला निकाल लेगा और कुछ को अजाब ज्यादा बढ़ा दे, है ना, फजूकु फलन नजीदकुम इल्ला आजाबा, चखो ये अजाब, अब तुम्हारे लिए और ज्यादती किसी चीज में नहीं होगी सिवाय अजाब के, अजाब ही बढ़ता ही जाएगा जब तक तेरा रब चाहे वो वैसे ही होता जाएगा। وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ, और वो लोग जो नेक बख्त हुए तो जन्नत में हमेशा रहने वाले हैं, इसमें मा दामत السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, इनके लिए भी वही चीज आई है, देखिए जब तक कायम है आसमान और जमीन, मगर माशा रब्बुक, मगर जो तेरा रब चाहे, तेरा रब चाहे, ये नहीं है इसका मतलब कि अल्लाह ताला जन्नत से भी कोई लोगों को निकाल देगा, ऐसी बात नहीं है। जन्नत में जो एक दफा एंटर हो गया ना, बस वो कभी नहीं निकलेगा वहां से, ये तो अल्लाह का वादा है, वो कभी नहीं निकलेगा वहां से। हाँ, जहन्नुम से लोग निकल के जन्नत में आ सकते हैं, जन्नत वालों को वो सेफ है, अब वो सेफ हेवन में आ गए, वो अब कभी नहीं वहां से निकलेगा। हाँ, इल्ला माशा रब्बुक, मगर जो तेरे रब चाहे, बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह ताला चाहेगा तो बाज के दर्जे और बुलंद से बुलंद करता जाएगा और उनको और अता करता जाएगा और उनकी नियमतें बढ़ाता जाएगा, एक से बढ़ के एक अता, एक से बढ़ के एक अता, आगे से आगे और मिलता जाएगा। अतान गैर मजजूज, बख्शिश है ये जो मुनकते होने वाली नहीं है, कभी इसको जवाल नहीं आना, इससे पता चलता निकलेंगे थोड़ी वहां से, तो वो तो बेफिक्र हो जाए, तो हमें बेफिक्र हम कब हो सकते हैं? जब तक जन्नत में एंट्री नहीं हो जाती ना, तब तक बेफिक्र हो ही नहीं सकते। कितना भी कोई नेक है ना, हम में से कोई कितना भी तहज्जुद गुजार, आलिम, फाजिल, वली, पता नहीं क्या क्या, जो भी है कोई, कितना भी आपको अपनी नेकी पे जोम है ना, आप और मैं सेफ नहीं है जब तक हमारा कदम, दोनों हमारे कदम जन्नत में ना चले जाएं। जैसे हजरत उमर ने फरमाया था, मेरे एक कदम जन्नत के अंदर हो रहा है, एक बाहर हो, तब भी मुझे डर होगा कि कहीं ये ना होके रह जाऊं। ये एक कदम अंदर है और एक बाहर, तो कैसे हम बेफिक्र हो सकते जब तक इसके अंदर दोनों कदम ना दाखिल कर ले। जब दो कदम दाखिल हो जाएंगे तो फिर आप रिलैक्स करें, फिर आप बेफिक्र हो जाएं, फिर आप मजे करें, फिर जो मर्जी करें, इसलिए कि उसके बाद फिर कोई मौत नहीं है। कोई मौत नहीं है, यानी गैर मुनकते होने का मतलब ये भी है, और वहां पे भी बता दिया गया ना कि अब ये जो चीज है, ये इससे कभी, यानी खालिदीना फिया अबदा जो लफ्ज आ जाता है ना, कि कभी ये खत्म नहीं होनी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत को एक मींडे की शक्ल में लाया जाएगा और उसको जन्नत और जहन्नम के दरमियान जिबा कर दिया जाएगा। अब मौत खत्म हो गई ना, फिर एक मुनादी ये निदा करेगा, एले जन्नत। वो सर उठा के उस पुकारने वाले की तरफ देखेंगे, वो कहेगा तुम पहचानते हो ये क्या है? वो कहेंगे हाँ ये मौत है, और सब उसको देख लेंगे। फिर वो मुनादी निदा करेगा, ए अहलु नार। वो सर उठा के उसकी तरफ देखेंगे, कहेगा तुम पहचानते हो ये क्या है? वो कहेंगे हाँ ये मौत है, और वो भी उसको देखेंगे। फिर उस मींडे को जिबा कर दिया जाए। फिर वो कहेगा मुनादी, एले जन्नत, अब हमेशा रहना है, मौत नहीं है, और एले जहन्नुम, अब हमेशा रहना है, मौत नहीं है। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत। सोचें अब के किसी को, जो जन्नत वाले होंगे उनको तो इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी होगी कि अगर मौत होती तो खुशी से ही मर जाते, और जहन्नुम वाले इस कदर गमगीन होंगे कि अब हमेशा रहना है, मौत नहीं, कि अगर मौत होती तो वो मर ही जाते गम से। अल्लाह अकबर। तो ये है वो दिन जो, जिसके अंदर इंसानों के इस तरह शकी और सईद होने का फैसला हो जाएगा। सादत का माना ही है नफा, नफा, अल्लाह ताला राजी हो जाएगा उस दिन। और जो दूसरे हैं शकी, वो जहन्नुम के शोलों में होंगे। अब ये एक और बात हसन बसरी ने फरमाया कि जहन्नुम के शोले अपनी कुव्वत से कुफार को उठा के जहन्नुम के सबसे बुलंद तबके में पहुंचा देंगे, और उस वक्त काफिर ये चाहेंगे कि वो जहन्नुम से निकल जाएं, तो फरिश्ते लोहे के गुर्ज मार मार के उनको फिर जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में पहुंचा देंगे। सो इनका दोजख में ऊपर उठना और नीचे गिरना, ये जफीर और शहीक है। शायद उस वक्त उनकी चीखें ऐसी हो, तो ये भी एक तफसीर आती है। और अबू मुस्लिम ने कहा कि जब इंसान पर सख्त गिरिया उजारी तारी होती तो सीने में जो सांस घुटता है ना, वो जफीर है। और इंतहाई गम के वक्त जो रोने से जो आवाज निकलती है, वो शहीक है। बाज दफा गशी तारी हो जाती इंसान पे, बाज दफा वो मर जाता है फिर, लेकिन वहां पे मरना नहीं है। और इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जो रोना है वो खत्म नहीं होगा, वो जफीर है, और जो गम है वो कम नहीं होगा, वो शहीक है। ये मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन अल्फाज की आई हैं।